बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, तो सब लोग मेरे पीछे बोलिएगा, न वेद यज्ञाधयनेर न दानेर न च क्रियाभिर न तपोभिर उग्रै एवं रूपः शक्यहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा। तो यानी भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, इन आप समझ ही रहे होंगे, वेद अध्ययन से, यज्ञ करने से, दान करने से और अन्य पुण्य कर्मों से या फिर उग्र तपस्या करने से इस सुंदर रूप कृष्ण का रूप जो भगवान का देख रहे हैं, चतुर्भुज रूप देख रहे हैं अभी तक, तो यहां पे वो आप नहीं देख सकते इसको इस प्रकार से, यानी कि आप समझ रहे हैं कैसे देख सकते हैं, ज्ञान योग के इस प्रयास के द्वारा इसको जस्ट चेक कर रहा था आप लोग कौन से क्लब में हैं, भक्ति के द्वारा ही इसको देख पाएंगे। आगे भी आप भगवान इस बात को अहम एवं विदो जना भक्त्या माम हम भी जानाती है, भक्त्या स्तरन्या शक्या अहम एवं विदो जना, इस चीज को 54th में देखेंगे। यहां भगवान समझा रहे हैं कि कैसे नहीं देख सकते, अर्थात उन आश्रयों को, उन साधनों को त्याग दो, साधन क्या स्वीकार करना है वो समझ लो, ठीक है। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्यन के द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में संसार में देखा जा सकता हूं। स्पष्ट समझ में आ रहा है ना? ना ना, पिछले ही पैराग्राफ में हमने पढ़ा है, भगवान ने बोला है कि ऐसा रूप तेजोमय आदि रूप मैंने कभी किसी को नहीं दिखाया। दुर्योधन को आप क्लास में नहीं थे क्या? दुर्योधन को क्या दिखाया जा रहा, देखिए प्रपात पिछले इसमें क्या बोलने हैं, दुर्भाग्यवश दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, किंतु कृष्ण ने उस समय अपने कुछ रूप दिखाए थे, किंतु वे रूप अर्जुन को दिखाए गए इस रूप से सर्वथा भिन्न था। स्पष्ट कहा गया कि इस रूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा था, तो दुर्योधन को नहीं दिखाया था, वो दिखाया था लेकिन वो फुल डिस्प्ले नहीं दिखाया था, ट्रेलर दिखाया था, पूरी पिक्चर दिखाई अर्जुन को,
उसमें काल तत्व नहीं था, इसमें काल तत्व था।
हाँ, तो काल तत्व नहीं दिखाया होगा उसमें, जो भी पता नहीं, मैं तो देखा नहीं, अब जो भी है
लिखा रहता है,
हाँ लिखा रहेगा। ठीक, माइक पे पूछे, कुछ पूछना है तुम? माता यशोदा को उन्होंने विभस्त रूप नहीं दिखाया था, बस ये दिखाया था कि एक यूनिवर्स के सारा कुछ उनके अंदर है और वो उसके अंदर है और फिर वो उसके अंदर कृष्ण को देख रही है, ऐसा वो भी आश्चर्यचकित हो गई थी, लेकिन अर्जुन की तरह भयभीत नहीं हुई थी, डरावना रूप नहीं दिखाया था, सब यही समझ सकते हैं। अब वो तो जब भगवान दिखाएंगे आपको तभी समझ आएगा। इस प्रसंग में दिव्य दृष्टि की को भली भांति समझ लेना चाहिए। तो यह दिव्य दृष्टि किसके पास हो सकती है? दिव्य का अर्थ है दैवी। जब तक कोई देवता के रूप में देवता प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। और देवता कौन है? वैदिक शास्त्रों का कथन है कि जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वे देवता हैं। अब एक भक्त ने मुझसे प्रश्न किया, प्रभु जी जो देवता के भक्त हैं वो, तो आप देख सकते हैं, विष्णु भक्ता स्मृता देवा आसुरस तद विपर्य, बड़ा कठोर वचन है कि अगर कोई विष्णु का भक्त नहीं है तो क्या है वो? असुर है। तो अगर ऐसा बोलेंगे तो कहेंगे अरे बाप रे, ये तो बड़े फैनेटिक लोग हैं, ऐसे बातें करते हैं, असुर बोल रहे हैं लोगों को। लेकिन हम नहीं बोल रहे हैं, शास्त्र बोल रहा है, और उसका कारण भी है। आप देखेंगे कि जो प्राय लोग देवता के भक्त होते हैं, क्या वो देवता के भक्त होते हैं या अपने इंद्रियों के भक्त होते हैं? उनका देवता से कोई मतलब नहीं होता। ये बात जब मैंने बाली में बताई थी तो लोग एकदम, एक व्यक्ति चकित रह गया, उसने स्पष्ट बोला कि हम यहाँ पे देवताओं की उपासना करते हैं इसलिए हमारी अच्छी व्यवस्था होती है। तो हमने कहा ठीक है, तो आप देवता की उपासना कर रहे हो या अपनी सुविधाओं की उपासना कर रहे हो? शॉक फॉर हिम, ऑल्दो वो अपनी सुविधाओं की उपासना कर रहा है, लेकिन उसको स्वीकार करने में बहुत कठिनाई महसूस हुई। जो नास्तिक हैं अर्थात जो विष्णु में विश्वास नहीं करते या कृष्ण के निर्विशेष अंश को परमेश्वर मानते हैं उन्हें यह दिव्य दृष्टि प्राप्त सॉरी क्षमा कीजिएगा दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। ऐसा संभव नहीं है कि कृष्ण का विरोध करके कोई दिव्य दृष्टि भी प्राप्त कर सके। दिव्य बने बिना दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं की जा सकती। एक एक पहेली है, अगर दाएं तरफ अग्नि है और बाएं तरफ अग्नि है और नीचे भी अग्नि है और ऊपर अग्नि है तो आप क्रॉस कैसे करेंगे? सीधे तो चले जाएंगे लेकिन जल नहीं जाएंगे, किसी स्थान को आपको क्रॉस करना है तो बाएं में भी अग्नि है, दाएं में भी अग्नि है, नीचे भी अग्नि है, ऊपर भी अग्नि है, तो आप क्रॉस कैसे करेंगे? और आपके पास वो स्वीट नहीं है, अग्नि सूट नहीं है, उत्तर है अग्नि बनके। समझ में? मतलब दिव्यता को पहुंचने के लिए, दिव्य स्तर को समझने के लिए दिव्य ही होना पड़ेगा। आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए आपको आध्यात्मिकता में पूरी तरह से स्पिरिचुअलाइज्ड होना पड़ेगा। ये बात बोली जा रही है, तब समझ पाएंगे। यस यस, एक अच्छी बात है। भौतिक जगत में हमारी चेतना पूरी तरह से अभी अभिनिविष्ट है कि मैं शरीर हूं। आप लोगों को लगता होगा कि आध्यात्मिक शरीर हमसे अभिन्न है, कैसा महसूस होगा? यहां महसूस कर लीजिए, क्या अपना भौतिक शरीर कभी अलग दिखता है, कभी अलग महसूस होता है? बहुत मेहनत करते हैं, जप करते हैं, भक्ति करते हैं, तब जाकर के ये मतलब प्रत्यक्षता का भाव होता है कि भाई मैं शरीर से अलग हूं। जबकि शरीर का जो स्वभाव है वो हमारी आत्मा से हमसे बिल्कुल अलग है। तो जब यहां ऐसा हो सकता है तो वहां तो सहज है कि जो शरीर है वो स्पिरिचुअल है, तो उसमें अभिन्नता देखने में क्या दिक्कत होगी? लेकिन वाकई का अनुभव क्या होगा वो तो हम वहीं जाके समझ सकते हैं, या जब हमें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो तब समझ पाएंगे।
जीवात्मा जो है ये तो तीन गुण से ग्रसित है, तीन गुणों में है। तो जो व्यक्ति तीन गुणों से परे हैं उनको समझना तो संभव नहीं है।
एग्जैक्टली, जब जैसे आप यहां से बैठे बैठे नहीं समझ सकते कि बादलों के ऊपर जाने से कैसा लगता हो, कुछ नहीं लगता उसे कुछ खास नहीं लगता। लेकिन जो त्रिगुणात्मक स्थिति है, क्या भगवान अपने आप को रिवील करते होंगे, बड़ा मुश्किल है समझना, असंभव है, एक्चुअली असंभव है जब तक हम उस त्रिगुणात्मक स्थिति को ना पहुंचे। दूसरे शब्दों में, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है वे ही अर्जुन की तरह विश्व रूप देख सकते हैं। ये तो समझ में आ गया, भगवान ने कृपा करके उनको दिया और अपने प्रयासों से हम इस दिव्य दृष्टि को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवद गीता में विश्व रूप का विवरण है। यद्यपि अर्जुन के पूर्व यह विवरण अज्ञात था, किंतु इस घटना के बाद अब विश्व रूप का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जो लोग सचमुच ही दिव्य हैं वे भगवान के विश्व रूप को देख सकते हैं, किंतु कृष्ण का शुद्ध भक्त बने बिना कोई दिव्य नहीं बन सकता। किंतु जो भक्त सचमुच दिव्य प्रकृति के हैं और जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन करने के लिए उत्सुक नहीं रहते। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, अर्जुन ने कृष्ण के चतुर्भुजी विष्णु रूप को देखना चाहा क्योंकि विश्व रूप को देखकर वह सचमुच भयभीत हो उठा था। यानी जिसका हृदय में प्रेम होता है वो भगवान के श्याम सुंदर मधुर रूप को देखना चाहता है। बड़ा स्पष्ट है, ऐसा भक्त लोग जानते हैं। बोलिए माइक पे, माइक थोड़ा दूर है आपसे।
उनको भय किस चीज का? जैसे हम देख सकते हैं कि प्रहलाद महाराज को नरसिंहदेव से भय नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ भय किस चीज से हो गया?
नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि अर्जुन
की मृत्यु का भय या फिर
अर्जुन नहीं मृत्यु का भय वाली बात नहीं है। भगवान ने स्वयं बोला था कि इसमें दिखाया था, अगर पढ़िएगा पिछले श्लोकों में, कि सबको मारूंगा तुमको छोड़ करके, पांडवों को छोड़ करके। कालोस्मी लोक शयकृत प्रविद्धो रिते, रित शब्द था, आप पांडवों को छोड़कर सबको मारूंगा, तो मरने का भय नहीं था। जो उनका सहज भाव है भगवान से साक्ष्य का, उसमें डिस्टर्बेंस आ गया था और वास्तविक रूप भी बहुत भयानक दिखाया था। नरसिंहदेव भगवान आए थे, लेकिन नरसिंहदेव अपना भगवान खैर मार भी रहे थे, अलग बात है, लेकिन सिचुएशन अलग है प्रहलाद महाराज की। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि विभत्स रूप तो है कि माँ ने शेरनी सबके लिए बहुत खतरनाक है लेकिन अपने बच्चे के लिए नहीं। तो वहां भगवान असुरों को भयभीत करने के लिए आए थे, मारने के लिए आए थे, लेकिन प्रहलाद महाराज को कोई डर नहीं लग रहा था। और वो बोलते भी है, कुछ श्लोक आता है कि मुझे आपके नाखूनों से बड़े दांतों से डर नहीं लगता, मैं अभी याद नहीं आ रहा श्लोक, लेकिन वही कहीं ना कहीं बोलते हैं प्रहलाद महाराज इस बात से। भक्तों का स्वरूप, एक मिनट चाहिए, आराम से यस बोलिए, माइक पे बोलिए।
जैसे हर भक्त की भक्ति का अपना अपना स्वरूप है, जैसे कोई श्याम सुंदर के स्वरूप को पसंद करता है, कोई विष्णु स्वरूप को पसंद करता है, कोई राम स्वरूप को पसंद करता है, तो लक्ष्मी जी भी उसी केस में आता है कि लक्ष्मी जी भी नरसिंहदेव को देख के वो आगे नहीं जाती कि मैंने कभी इस स्वरूप को जो है, क्योंकि उनका एक कोमल हाँ। स्वरूप है भगवान का उनके हृदय में बैठा, ऐसा नहीं कि वो लक्ष्मी जी भक्त नहीं है हाँ। लेकिन फिर भी वो एक खास स्वरूप जो है उनके मन में प्रतिष्ठित है। और
देखिए एक ये बात भी, जब भगवान की लीला होती तो किसी विशेष भक्त की विशेष गुण को प्रकाशित करने के लिए होती है। क्या शिव जी भक्त नहीं है, ये परम भागवत नहीं है? परम भागवत होने का मतलब निर्भयता को प्राप्त है।
लेकिन गोपियां जो है वो चतुर्भुज स्वरूप को भी इग्नोर करती हैं कि मैं वो हाँ। नहीं करती।
ये सही उत्तर यही है कि विशेष परिस्थिति में भक्त विशेष प्रकार से बर्ताव करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि माता यशोदा भी विस्मित हो गई थी, ये क्या है, मेरे बच्चे क्या हो गया हाँ, जब उनने यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया। तो ये बहुत पसंद नहीं आता भक्तों को ज्यादा नहीं। प्रभात बोल रहे हो दिव्य है स्तर पर, उनको उतना उसमें रुचि नहीं है। आपको याद होना चाहिए कि भगवान से विश्व रूप की प्रार्थना इसलिए करी थी कि जो अन्य लोग हैं आने वाले वो भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार कर सके, ना कि उनको सीखने की जरूरत थी कि भगवान कौन। ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। कौतूहल वश अर्जुन ने विश्व रूप नहीं देखा था, कि बहुत दिन से देखा नहीं है, दिखाइए। पिक्चर देखने के जैसे पिक्चर देखने जाते हैं ना सिनेमा में, वैसा ही देखने गए थे। स्पष्ट है, आप 11वां अध्याय पढ़ेंगे तो इसलिए लिखवाया ताकि बाकी आगे लोग झूठ मतलब झूठ नहीं बका सके। इस श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, यथा वेद यज्ञाध्यनय, जो वेदों तथा यज्ञ अनुष्ठानों से संबंधित विषयों के अध्ययन का निर्देश करता है। वेदों का अर्थ है समस्त प्रकार का वैदिक साहित्य, यथा चारों वेद ऋग यजु साम तथा अथर्व एवं 18 पुराण, सारे उपनिषद तथा वेदांत सूत्र। मनुष्य इन सबका अध्ययन चाहे घर में करे या अन्यत्र। इस प्रकार यज्ञ विधि के अध्ययन करने के अनेक सूत्र हैं, कल्प सूत्र तथा मीमांसा सूत्र। ये सब मुझे पता नहीं इसके बारे में, कि पढ़ा नहीं कभी, आता होगा जब उसे देखने को नहीं मिलेगा तो रिसर्च करने का फायदा क्या। कभी कभी लोग सोचते हैं प्रभु जी षट चक्र योग्य क्या है, हमने कहा जान लोगे तो करोगे क्या, कहते नहीं जानने का फायदा क्या। जैसे पूछो प्रभु जी ये टिम्बकटू का रास्ता टिकट कहाँ से मिलेगा, जाना है कि नहीं, ऐसे पूछ रहा हूँ मैं। तो बहुत से लोग ऐसे ही प्रश्न करते हैं, प्रभु जी वहाँ जम्बू नदी में कैसे जामुन का रस बहता होगा, वहाँ पीना है क्या आपको, तो नहीं, तो फिर पूछ के रहे हो, और पीना भी है तो मिलेगा क्या तुमको, तो नहीं, तो फिर पूछ के रहे हो, केवल कौतूहल के लिए। दान है सुपात्र को दान देने के अर्थ में आया है, जैसे वे लोग जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, यथा ब्राह्मण तथा वैष्णव। इस प्रकार क्रिया भी शब्द अग्निहोत्र के लिए है और विभिन्न वर्णों के कर्मों का सूचक है। मतलब आप समझ गए होंगे विभिन्न प्रकार के यज्ञ की प्रक्रिया जिसके द्वारा शुद्धिकरण होता है। शारीरिक कष्टों को स्वेच्छा से अंगीकार करना तपस्या है, सब आप समझते हैं। इस तरह मनुष्य भले ही इन सारे कार्यों तपस्या दान वेद अध्ययन आदि को करे, किंतु जब तक वह अर्जुन की भांति भक्त नहीं होता तब तक वह विश्व रूप का दर्शन नहीं कर सकता। अर्जुन किस प्रकार के भक्त थे ये समझ लेना चाहिए। जैसा भगवान बोलेंगे वैसा मैं करूंगा, इससे कोई मतलब नहीं है कि दुनिया क्या सोचती है। कोई कहेगा अरे देखो कैसा शिष्य था, अपने ही गुरु जी पे बाण चलाया उसने।
अर्जुन भी तो विश्व रूप दर्शन करने के बाद खुश नहीं थे ना,
खुश नहीं थे, लेकिन विश्वरूप दर्शन करने की इच्छा उनकी लालसा इसलिए पूर्ण हो गई कि उसके द्वारा स्थापित हो गया कि अर्जुन कृष्ण भगवान है। कहने का अर्थ ये है कि भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी प्रकार से उत्सुक रहते हैं जैसे शुद्ध भक्त भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उत्सुक रहते हैं। ये संबंध रेसिप्रोकल है, तो बहुत ध्यान देना चाहिए। प्रभुपाद जी यहां तक मुझे स्मरण आ रहा है भागवत में ही बताते हैं इस बात को, राजसूय यज्ञ के किस बताते हैं कि क्योंकि जो पांडव थे, पांडव नहीं क्षमा कीजिए का पांडव थे, वो पूरी तरह शरणागत थे, जैसा भगवान चाहेंगे वैसे भक्त बन जाएंगे। प्रभुपाद कहते हैं मैलिएबल भक्त। मैलिएबल समझते हैं, किसी मेटल को पीट पीट करके कैसे भी कोई भी रूप दे दो, ऐसे ही प्रेमवश भक्त कोई भी सेवा करने के लिए तैयार रहते थे, इस कारण से भगवान भी कोई भी सेवा करने के लिए तैयार रहते थे। यहां तक कि राजसूय यज्ञ में पांव धुलने की और जूते उठाने की सेवा भी भगवान करते थे। ये आपस में बड़ा प्रेममय रेसिप्रोकल संबंध है। कृष्णा इज कॉन्कर्ड बाय हिज डिवोटी एंड डिवोटी इज कॉन्कर्ड बाय कृष्णा। बहुत ही अद्भुत बात है। इस चीज को आप भक्तों के जीवन में देखते हैं कि नहीं देखते हैं? माधविंदपुरी कितनी वृद्धावस्था में तुरंत चले गए सैंडलवुड लेने के लिए, है ना? सोचा भी नहीं कि ट्रेन मिलेगी कि नहीं, रिजर्वेशन है कि नहीं, कुछ था ही नहीं, पैदल पैदल जा रहे हैं। तो ये बड़ा अद्भुत है एक्चुअली, क्योंकि प्रेम में व्यक्ति अपने दुखों के बारे में नहीं सोचता है। बड़ी स्पेशल क्वालिटी है। ठीक है, अर्जुन की भांति भक्त होने का अर्थ क्या है हम थोड़ा समझे। निर्विशेषवादी भी कल्पना करते रहते हैं कि भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं, किंतु भगवद्गीता से हम जानते हैं कि निर्विशेषवादी भक्त नहीं है। अर्थात कभी कभी ये लोग बोलते हैं हमारे गुरुजी ने भी विश्व रूप का दर्शन दिया है, कहते हैं कि हमारे गुरुजी भगवान हैं और विश्व रूप का दर्शन आपको तब देंगे जब आप उनके भक्त बनोगे। लेकिन यहां पर भगवान स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि विश्व रूप का दर्शन कौन कर सकता है। फलतः वे भगवान के विश्व रूप को नहीं देख पाते। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो अवतारों की सृष्टि करते हैं। अभी देखिए हम यही चर्चा कर रहे थे, वे झूठे ही समान व्यक्ति को अवतार मानते हैं, किंतु यह मूर्खता है। हमें तो भगवद गीता का अनुसरण करना चाहिए, अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है। यद्यपि भगवद गीता को भगवत तत्व का प्राथमिक अध्ययन माना जाता है, तो भी यह इतना पूर्ण है कि कौन क्या है इसका अंतर बताया जा सकता है। बहुत सुंदर बात। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं एक जगह है कि भगवद गीता सूर्य के समान है, और अगर आप नालायक नहीं हैं, मतलब उन टीकाकारों के प्रति बोल रहे हैं जो अपनी मनगढ़ंत विवेचना करते हैं, अगर आप पूर्ण रूप से नालायक नहीं हैं तो आप इसकी विपरीत व्याख्या नहीं कर सकते। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि शिव बाबा भगवान है, और अद्भुत बात यह है कि वो भगवद गीता को कोट करते हैं, और मैंने तो आज तक, आप लोगों ने भी गीता पढ़ रखी होगी, शिव बाबा कौन से श्लोक में आया है? किसी श्लोक में नहीं आया है, और फिर भी लोग सोचते हैं कि शिव बाबा भगवान है। कितना आश्चर्य है। और आप देख सकते हैं कि लोगों की श्रद्धा के संग कितने बड़े खिलवाड़ किया जा रहा है। साधुओं पर श्रद्धा है अभी भारतीयों की, अभी तो है ही, लेकिन कुछ भी बोल दिया तो स्वीकार कर लेते हैं। ये बहुत लोगों में सबमिसिवनेस और श्रद्धा तो होनी चाहिए, लेकिन कर्तव्य है साधुओं का कि उसे खिलवाड़ ना करें। वस्तुतः साधु शब्द ही मतलब होता है अच्छा व्यक्ति, ऑनेस्ट व्यक्ति। ये सब लोग साधु नहीं हैं, इस कारण से इस प्रकार की विवेचना करते हैं। तुमसे पूछ लेना चाहिए कि भगवद गीता में कहां शिव बाबा का वर्णन है, या और किसी जी के गुरु का नाम है।
भगवान जो कहते हैं कि मैं रुद्र हूं और ओम हूं, शायद वो उसको कुछ रिलेट करके ऐसा घुमा फिरा कैसा बनाते
हैं। हाँ, घुमा फिरा के बताते हैं कि मैं रुद्र हूं, तो खाली एक ही बात बोलते हैं। फिर तो वो बोलते हैं कि मैं पर्वत भी हूं, तो आपके गुरुजी पर्वत भी भगवान हो जाने चाहिए। स्पष्ट रूप से भगवान बोलते हैं कि इस जगत में कोई भी आप तेजोमय वस्तु देखते हो, मेरा अंश मात्र है, एकांश ना से तो जगत है ना। तो विभूति है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो भगवान है। तो लोगों को, और फिर शिव जी को मानोगे तो चलो समझ में आता है, शिव बाबा कहां से आ गए है ना। अगर अब आप बताइए बनोराम प्रभु, मैं कहूं कि मैं कृष्ण से मिल के आया हूं, तो अब इस पे श्रद्धा रखा जाए तो बड़ा डाउटफुल हो जाएगा ना। आपको कैसे मालूम चलेगा कि मैं कृष्ण से मिल के आया हूं? या मैं कहूं कि हम जो चार ब्रह्मचारी हैं सैफरन में, उनको कृष्ण ने दर्शन दिया, व्हाइट वालों को नहीं दिया, तो व्हाइट वाले अब हमारी शरण में आए, तो ये तो मूर्खता वाली बात हो जाती है ना। इस प्रकार से श्रद्धा रख रहे हो, बिल्कुल आंखों पर श्रद्धा, आंखें बंद करके श्रद्धा रख रहे हो।
जो हमारे रूममेट है उनको किसी ने गीता दी है, जिसका नाम है कबीर यथा रूप गीता।
ओह,
आप वो गीता पढ़े
तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार। और मैं तो समझ नहीं पाता हूँ कि लोग क्यों इस प्रकार से स्वीकार भी करते हैं, देखने की जरूरत भी क्या है किताबों।
भगवत गीता में कई जगह में ऐसा भगवान इनडायरेक्ट बोलते हैं ना अर्जुन को, जैसे तुम इस परम पुरुष का ध्यान करो, ऐसा गुरु के पास जाओ जो तत्वदर्शी हैं। हाँ। तो वो लोग सोचते हैं कि तो भगवान को कोई और है। हाँ। इसलिए कृष्ण ऐसा बोल रहे
हैं। एक बार बहुत बार लोग बोलते हैं कि परमात्मा कृष्ण कैसे हैं, तो मैंने कहा स्पष्ट रूप से भगवान गीता में बोलते हैं अहम आत्मा गुड़ा केश, ये बात सत्य है कि भगवान बोलते हैं कि तुम परमात्मा के शरण में जाओ, लेकिन ये भी तो बोलते हैं कि मैं ही वो परमात्मा हूं, तो एक ही बात क्यों स्वीकार करते? इसमें भगवान गीता में तमेव शरणम गच्छा सर्व भावेन भारत, उसी के शरण में जाओ। तो सोच रहे हैं कि लोग कृष्ण की नहीं किसी और की शरण जाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये भी तो बोल रहे सर्व धर्मान परित्यज मामेकम शरणम में जा, दोनों ही बातें लेनी चाहिए ना। ठीक है, हमें ध्यान देना चाहिए कि भगवद गीता में उपनिषद लैंग्वेज यूज किया गया है, उपनिषदिक लैंग्वेज, क्योंकि ये उपनिषद के रूप में है, तो ऐसे शब्द आएंगे ब्रह्म परम पुरुष या और, लेकिन हमें ये भी समझ में आना चाहिए भगवान स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं अहम सर्वस्व प्रभवो, ये भी बोल रहे हैं। ठीक है, ओके। यद्यपि भगवद गीता को भगवत तत्व का प्राथमिक अध्ययन माना जाता है, ये पढ़ लिया हमने, छद्म अवतार के समर्थक यह कह सकते हैं कि उन्होंने भी ईश्वर के दिव्य अवतार विश्वरूप को देखा है, किंतु यह स्वीकार नहीं क्योंकि किताब में देखिएगा, क्योंकि यहां पर यह स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि कृष्ण का भक्त हुए बिना ईश्वर के विश्वरूप को नहीं देखा जा सकता, अतः पहले कृष्ण का अशुद्ध भक्त बनना होता। मैं जस्ट चेक कर रहा था कि आप लोग ट्रैक कर रहे कि नहीं। अतः पहले कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना होता है, तभी कोई दावा कर सकता है कि वह विश्व रूप का दर्शन करा सकता है जिसे उसने देखा है। ये देख लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि जब जितनी मात्रा में हमारा शुद्ध होता है हृदय, उतनी मात्रा में भगवान प्रकट करते हैं। हम भगवान को देख नहीं सकते हैं, भगवान हमें दिखा सकते हैं। अंतर समझ रहे हैं सुमधुर प्रभु? बताइए क्या अंतर है दो इन शब्दों में, वाक्यों में?
हम जितना ही प्रयास करें भगवान को देख नहीं सकते, भगवान हम लोग के ऊपर कृपा करेंगे। yes. तो भगवान हम लोग के ऊपर,
वेरी नाइस। जितना भी हम साधन भजन कर रहे हैं उसका उद्देश्य है भगवान के अनुग्रह को प्राप्त करना। इसको आप श्रीमद् भागवतम में भगवान नारायण की उक्ति को ब्रह्मा जी के संग देख सकते हैं। कहते हैं जीवन का लक्ष्य यही है कि मेरे अनुग्रह को प्राप्त किया जाए और जैसा मैं अभी हूं आपके सामने ऐसे साक्षात दर्शन प्राप्त किया जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर अनुग्रह प्राप्त नहीं है तो हम नहीं देख सकते। और इस अध्याय में भी हमने देखा कि भगवान अर्जुन को बोलते हैं दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं आपको दिव्य चक्षु प्रदान कर रहा हूं, उससे आप इस विश्व रूप को देख सकने में समर्थ हो पाएंगे।
चरितामृत में भी कहते हैं ना सहित
अध्यावधि लीला करे गौरा राय कोनो कोनो भाग्यवान देखे बारे पाए, कृष्ण की कृपा से ऐसा हो सकता है। ठीक है, कोई भी हम कार्य कर रहे हैं धीरे धीरे ये चेतना में आना चाहिए कि इससे कृष्ण आप प्रसन्न हो जाएं, कृष्ण आप प्रसन्न हो जाएं, मैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ।
सही तो ईश्वर तत्व जानी बारे पार ईश्वर कृपा ले सही अच्छा जा रहे।
हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कि ईश्वर की कृपा जिसको प्राप्त होती है वो समझ सकता है इस चीज को। पता नहीं आपने कहां पढ़ा है लेकिन इसी चीज को सार्वभौम भट्टाचार्य को, मेरे ख्याल से उसी कंटेक्स्ट में है, सार्वभौम भट्टाचार्य को गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं कि भगवान आपके घर में है और आप समझ नहीं पा रहे हो कि भगवान कौन है। अतः आप मुझसे जो है वो पूछ रहे हो, क्या कहते हैं उसको, प्रमाण पूछ रहे हो, जैसे सूर्य घर में आए बोले सूर्य कौन है प्रमाण दो। अरे भाई कोई प्रमाण, जैसे आप बोले एलईडी लाइट कहाँ पे है, उदाहरण प्रभु यहाँ पे एलईडी लाइट कहाँ है, ढूंढ के बताओ, ढूंढो, ढूंढने की जरूरत क्या है, सामने स्पष्ट है ना। तो अब वही महाराज हमेशा बोलते हैं कि रिसर्च कर रहे हैं लोग भगवान कौन है, तत्व विचार करेंगे। अरे भाई भागवत के पहले श्लोक को देख लो ना, कौन है भगवान। लेकिन अद्भुत बात है कि अब आंखें बंद कर लीजिए उदाहरण, अब ढूंढिए कहां पे लाइट। आंखें बंद कर लेंगे फिर तो आप पूरे हाथ पांव मारते रहिए कुछ नहीं देख पाएंगे।
महाराज की हजारों उल्लू अगर इकट्ठा होकर बोले कि सूर्य,
ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि मान लो भाई हजारों 5 करोड़ उल्लू इकट्ठे हो जाएं और बोले भाई हम सूर्य की सत्ता को नहीं मानते, तो क्या सूर्य कहेगा अरे भाई मुझे जल्दी उदित होना पड़ेगा नहीं तो मेरी सत्ता चली जाएगी। ऐसा नहीं होता है, भगवान को कोई गरज नहीं, तुम ना मानो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नुकसान हम ही उठाएंगे। okay? कृष्ण का भक्त कभी भी छद्म अवतारों या उनके अनुयायियों को मान्यता नहीं देता। ध्यान देना चाहिए नम्रता का अर्थ मूर्खता नहीं होता है। महाप्रभु नम्र थे कि नहीं? नहीं, हाँ बहुत नम्र थे। लेकिन जब यहां पे बलभद्र भट्टाचार्य बोलने लगे अरे भाई यमुना जी में कृष्ण अवतरित हुए, तो 2 थप्पड़ लगाए उन्होंने, कहते हैं अरे कृष्ण अवतरित होते हैं क्या कलयुग में, कल तुम्हें मालूम चलेगा कि कृष्ण कौन अवतरित हुआ, तो मालूम चलता है कि कुछ लोग मछुआरे लोग जो है वो मशाल लेकर के यहाँ पे मछली मार रहे हैं, तो ऐसे कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नम्रता का अर्थ मूर्खता नहीं होता है, ध्यान देना चाहिए। एक और श्लोक देख लेंगे उसके बाद रुकेंगे। माँ कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, कोई टीका या टेक पड़े? ठीक, माइक पे बोलिए क्या प्रश्न है।
अंगीकार का मतलब,
अंगीकार मतलब स्वीकार करना, ठीक है। माते व्यथा, अच्छा प्रश्न है। अंगीकार, अंग मतलब एकदम अपने बाहों में भर लेना, मतलब हृदय से स्वीकार कर लेना, अंगीकार करना, अच्छा प्रश्न है। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो, दृष्ट्वा रूपं गो घोरमिद्रं ममेदम्, व्यपेत भी प्रीत मनः पुनस्त्वम्, तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। एक जगह प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बोलते हैं, जब कोई भगवत गीता पढ़ता है तो प्रभु भगवान कहते हैं, अरे भगवत गीता पढ़ रहा है, पूरे विश्व में कोई तो पढ़ता नहीं है। भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, अरे देखो भगवत गीता पढ़ रहा है, मेरा बच्चा भगवत गीता पढ़ रहा है, वेरी नाइस। बड़े स्टाइल से प्रभुपाद बोलते, नोबडी रीड्स भगवत गीता, सो ही बिकम्स वेरी हैप्पी, ओह ही इज रीडिंग भगवत गीता, वेरी गुड। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो, अब इसे समाप्त करता हूं। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ, तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। इच्छित रूप कौन सा है? द्विभुज रूप देखो। अभी तक चतुर्भुज था, अब द्विभुज रूप दिखाएंगे भगवान। भगवत गीता के प्रारंभ में अर्जुन अपने पूज्य पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण के वध के विषय में चिंतित था, किंतु कृष्ण ने कहा कि उसे अपने पितामह का वध करने से डरना नहीं चाहिए। जब कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र के पुत्र द्रौपदी का को विवस्त्र करना चाह रहे थे, नहीं विवस्त्र एक ही बात है, विवस्त्र निर्वस्त्र करना चाह रहे थे, तो भीष्म तथा द्रोण मौन थे, अतः कर्तव्य विमुख होने के कारण इनका वध होना चाहिए। एक बात ध्यान देना चाहिए कि शांति अनुमति का सूचक है, साइलेंस इज सिम्टम ऑफ, कुछ शब्द बोलते हैं मैं याद नहीं आ रहा, साइलेंस इज ए सिम्टम ऑफ अप्रूवल। तो कुछ नहीं बोले तो ये नहीं कह सकते हैं कि पाप के भागी नहीं बने, तो ऐसा नहीं है कि कुछ गलत हो रहा हो और हम अगर अधिकारी की पोजीशन पे हैं और हम कुछ कहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो कुछ नहीं बोल रहे, उसका हमको रिएक्शन स्वीकार करना पड़ता है। क्या है वो? वृत्तस्य अपराधः स्वामिनो दंडः। अगर कोई वृत्त है, कोई डिपेंडेंट है, वो गलती करता है तो उसका दंड स्वामी को मिलता है। ये जय विजय के प्रकरण में आता है बात। बोलिए माइक पे, माइक दूर मत रखिए प्रभु जी से, पास पे एक माइक प्रभु जी का।
हाँ, एक कैसे, लेकिन दूसरों के बीच में नहीं बोलना चाहिए,
दूसरों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, अर्थात अगर हमारे पास शक्ति है एज एन अथॉरिटी उसको ठीक करने की, तो हमको जरूर स्टेप लेना चाहिए। जैसे यहां हम देख सकते हैं, अगर भीष्म द्रोण डांटते, हाँ अगर वो डांटते तो ये सब कुछ कोई मतलब ही नहीं था, इतना कुछ होने का संभावना ही नहीं थी, लेकिन वो चुपचाप इसलिए बैठे रहे क्योंकि वो उनसे मेंटेनेंस लेते थे। और वस्तुतः दुर्योधन से नहीं लेते थे, वो धृतराष्ट्र से लेते थे, लेकिन क्योंकि धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोल रहे थे आसक्ति के कारण, इस कारण से वो नहीं। इसीलिए धर्म जो लीडर है, धर्म का पालन करने के लिए उसको निरासक्त होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आसक्ति आ जाएगी वो धर्म का पालन हम नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात हम सीखते हैं। ओके, माइक से पूछिए।
द्वादश महाजनों में से एक है भीष्मदेव, तो कैसे इतना कवर्ड हो सकते हैं, थोड़ा सा मेंटेनेंस लिया और उनका इतना कवर्ड।
भगवान यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कितना भी महान हो, वो अगर अधर्म का साथ लेगा तो उसका विनाश होगा ही। लेकिन आपको ये भी दिखाना चाहिए कि जो महाभारत जिस लेवल से लिखी गई, उससे और डीपर लेवल में भागवतम लिखी गई, और भागवत में प्रदर्शित किया गया किस प्रकार से भीष्म पितामह शुद्ध भक्त हैं। तो ये बड़ा भगवान एक ही समय में बहुत सारी लीलाएं संपन्न करते हैं और बहुत मुश्किल होता है समझना। ओके, कहां गए थे हम लोग? कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन यह दिखाने के लिए कराया कि ये लोग अपने कुकृत्यों के कारण पहले ही मारे जा चुके हैं। यह दृश्य अर्जुन को इसलिए दिखलाया गया क्योंकि भक्त शांत होते हैं और ऐसे जघन्य कर्म नहीं कर सकते। मतलब आप पहले से डिसाइड हो चुका है, आप लोग आपको खाली हाथ लगाना है। जैसे पहले से डिसाइड हो चुका है कौन कौन से गांव और शहरों में प्रचार होगा, सभी में होगा, तो आप कहीं पे भी जाके प्रचार कर सकते हो। पहले से डिसाइड हो चुका है कि ये लोग भक्त बनेंगे, आपको खाली हाथ लगाना है। आप कहें नहीं हाथ लगाऊंगा तो लोग, हाँ पहले मुझे शुद्ध होना है, बहुत साबुन घिसना है तब मैं शुद्ध हो जाऊंगा, उसके बाद मैं प्रचार करूंगा, ये होगा वो होगा, मेरी क्या योग्यता है। प्रभुपाद जी का बड़ा सुंदर स्टेटमेंट है, दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज नॉट स्प्रेडिंग बिकॉज ऑफ यू बट इंस्पाइट ऑफ यू। कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज नॉट स्प्रेडिंग बिकॉज ऑफ यू बट इंस्पाइट ऑफ यू। आपकी वजह से कृष्ण भावना का प्रचार नहीं हो रहा है, आपके बावजूद कृष्ण भावना का प्रचार हो रहा है। अर्थात हमारे कितने दुर्गुण हैं, आलस है, बहुत सारी गलतियां हैं, फिर भी कृष्ण भावना का प्रचार हो रहा है क्योंकि महाप्रभु की इच्छा से हो रहा है। ये बात समझ लेना चाहिए। तो इसलिए योग्यता योग्यता की बात नहीं, केवल ये योग्यता रखनी है कि जैसा है वैसा प्रस्तुत करना। और ये ना सोचे कि कितने लोग हमारे लेक्चर को सुनेंगे, कितने लोग अप्रिशिएट करेंगे। जैसा है वैसा प्रस्तुत करना, चेंज नहीं करना, बस इतनी योग्यता रखनी। मे बी नहीं आना चाहिए लेक्चर में आपके, मे बी इज लाइक दिस, मे बी लाइक दैट, ये बोल सकते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मे बी नहीं आना चाहिए, मे बी खतरनाक होता। विश्व रूप प्रकट करने का अभिप्राय स्पष्ट हो चुका था। अब अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना चाह रहा था, अतः उन्होंने यह रूप दिखाया। अभी भी द्विभुज की बात नहीं आई, हम लोग बड़े उत्साहित हैं द्विभुज देखने के लिए। भक्त कभी भी विश्व रूप देखने में रुचि नहीं लेता क्योंकि इसमें प्रेमानुभूति का आदान प्रदान नहीं हो सकता। भक्त या तो अपना पूजा भाव अर्पित करना चाहता है या दो भुजा वाले कृष्ण का दर्शन करना चाहता है जिससे भगवान के साथ प्रेम भक्ति को आदान प्रदान कर सके। अर्थात चतुर्भुज रूप में ऐश्वर्य भाव रहता है और द्विभुज रूप में और आत्मीयता से भगवान की सेवा कर सकते हैं। अब उसके बाद संजय ने क्या बोला आज नहीं पढ़ेंगे, खुश रहिए। श्रीमद भगवद गीता की जय।